सब कुछ अंदर ही सब कुछ मिलेगा, ज्ञान का क्लास भी वही मिलेगा, सब कुछ वहां मिलेगा। बाहर की दुनिया की हवा बिल्कुल बंद, पेट में भी बच्चा कैसे पलता है, बाहर की दुनिया की कोई हवा नहीं। ऐसे ही वहां 7 दिन की जो बच्ची है, 1 दिन आना है 1 दिन जाना, 9 दिन उसमें आत्मा पूरी पक जाती है। पक जाने के बाद वो जो फैसला करती है कि ये हमारा बाप है जन्म जन्मांतर, वो फैसला उसे दिखाई दिया जाता है, ताकि बाद में ये न कहे कि हमको तो ऐसे ही बरगलाए दिया गया है। अभी निश्चय बुद्धि जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए गीता में कहा गया है, निश्चय बुद्धि को कहते हैं अनिश्चय बुद्धि विनश्य। एक बार भगवान बाप के घर में जाकर के बच्चा बच्ची पैदा हो गया तो उसकी विजय ही विजय है संसार। संघर्ष तो होंगे, बिना लड़ाई के राजा ही नहीं मिलती, लेकिन हर संघर्ष में और बच्चे की विजय होगी। उनको पांडव बच्चा कहा जाता, पांडव ज्यादा नहीं होते, कितने होते हैं 5 होते, यानी उंगलियों के गिनो। और कौरव कितने होते हैं 100, बहुत होते हैं 100। तो जो राज घराने के बड़े बड़े थे उनके नाम, और प्रजा उनकी बहुत होती है, पांडव की तो प्रजा होती है। खुद ही पांडव खुद ही शासक है, खुद ही प्रजा है, 5 ही है। तो ये जो अभी जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में ये कहने के लिए पक्की बात है कि ये भगवान के बच्चे हैं। अब जिन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं, समझाई नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पहचाने ही नहीं, तो उनको किस आधार पर उनसे संपर्क किया। इन आंखों से तो भगवान देखने में आता नहीं, इन आंखों से भगवान देखा जाएगा, वो तो निराकार है, निरंजन है। ज्ञान की दृष्टि चाहिए, ज्ञान की दृष्टि देने के लिए वो 7 दिन बैठकर के कोर्स कराएगा। वो कोर्स आप यहाँ भी कराते हैं, आप खुद भी कोर्स सुन करके समझ करके जब बाद में आपकी बुद्धि में जब बैठ गया तब आप भग गए, और बात को जब समझा पूरा तो आपने जाके मारे एफिडेविट लिख दिया, एग्रीमेंट लिख दिया कि ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध संपर्क है, कैसे हमें चलाएंगे, ये नहीं तैयार हो गई। ये कार्य और किसी धर्म पिता ने नहीं किया है। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, वो आकर के अपनी धर्म की धारणाएं तो बताई, लेकिन उन्होंने पुरानेपन का विनाश नहीं किया। पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़ियां, पुराने अंधविश्वास वो सारे चलते चले आ रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ गए। तो जैसे कि दूध का भरा हुआ घड़ा हो या विष का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें कोई दूध डालता जाए तो क्या वो प्योर दूध बन जाएगा कभी है? नहीं बनेगा। डालते जाइए कभी दूध नहीं बनने वाला, वो दूध भी मिस होता जाता है। तो ऐसे ही दुनिया में जितने भी धर्म आए उनकी हिस्ट्री है 2500 साल की। उससे पहले कोई गुरु नहीं आया, 2000 साल से पहले किसी के पास हिस्ट्री भी नहीं है। सबसे पहले दुनिया में मनुष्य गुरु आया इब्राहिम, फिर महात्मा बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर गुरु नानक, फिर वगैरह 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 आते रहे। तो जितने भी आए उन्होंने अपनी अपनी बातें सुना दी, टाइम टू टाइम आकर के सत्युति रघुवंश पर या सत्युति मकान में उन्होंने अपनी रिपेयरिंग कर दी, इब्राहिम आए, उन्होंने अरब देशों में जाकर के रिपेयरिंग कर दी, अरब देश इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने चीन जापान जो पूर्वीय देश है उनमें आकर के रिपेयरिंग कर दी, नया धर्म चला दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया। इनके सबकी तिथि तारीख है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया और कैसे स्थापन किया, उसकी हिस्ट्री सिर्फ भगवान ही आकर के बता सकते। आज के मनुष्य गुरुओं ने कुछ शास्त्र लिखे तो है, लेकिन वो शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है कोई ये कहता है भगवान ने लिखा। धर्म पिताए आते हैं तो वो कोई किताब लिख करके छोड़ जाते हैं क्या? चाहे क्राइस्ट आए हो, चाहे मोहम्मद आए हो, चाहे शंकराचार्य आए हो, गुरु नानक आओ, उन्होंने कोई किताब लिख करके छोड़ी क्या? नहीं, वो मुख से आकर के डायरेक्ट बोला, जो बोला उसके कई सौ वर्षों के बाद फिर उनको उनके बोले हुए को लिखा गया, वो धर्म ग्रंथ बन गया। तो ऐसे ही भगवान की जब सृष्टि पर आता है तो कुछ लिख करके नहीं कोई गीता छोड़ जाता है, इसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई ज्ञान की गीत। वो ज्ञान का गीत जो आकर के गाता है, वो ज्ञान का गीत कोई लिख करके नहीं गाता है। तो जो गीता आज हमें मिल रही है संस्कृत की, वो कोई भगवान ने नहीं लिखी है, कहते हैं व्यास भगवान ने लिखी। अब भगवान तो ढेर बता दिए, व्यास भगवान कहे हैं कि राम भगवान कहे हैं कि कृष्ण भगवान कहे, 24 अवतार बता दिए। ये पैदा होता है, भगवान अगर कृष्ण को कहे द्वापर युग के अंत में आकर जो उन्होंने महाभारत युद्ध कराया, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? नहीं, अरे भगवान आके पापी कलयुग की स्थापना क्यों करेगा? भगवान आएगा तो सतयुग की स्थापना करेगा या पापी युग की स्थापना करेगा? भगवान आएगा तो उत्थान करेगा या पतन करेगा दुनिया का? ये सब मनुष्य गुरुओं की लिखी हुई किताबें हैं, जिन किताबों में अगलम बगलम लिखी हुई। एक तरफ कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, बड़ा सुख शांति थी, दूसरी तरफ लिख दिया राम की सीता को नहीं लिखी, रावण का राज्य था। ये जो बातें ढेर सारी जिनका संबंध नहीं जुड़ता है बुद्धि से, वो ऐसी ऐसी बातें जो लिख दी है उनसे आदमी आज नास्तिक होता चला जाए। असलियत क्या है? वो असलियत के बारे में कहा जाता है कैसे समझे रवि और कैसे समझे कवि। या तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर आ जाए तो वो असली बात समझा सकता है, या तो वो कवि जिन कवियों ने वो कविता लिखी थी, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो जिसके आधार पर बाद में तुलसी कृत रामायण लिखी गई, तो वो कवि भी अब रहे नहीं तो उनकी व्याख्या कौन करेगा? सही व्याख्या तो वो ही कर सकते थे। आज का मनुष्य होता जाता है विकारी, विकारी मनुष्य की बुद्धि भी कैसी होगी? विकारी बुद्धि होगी ना, तो विकारी बुद्धि से जो अर्थ करेगा वो भी अर्थ करते हैं। इसलिए जो भी वेद शास्त्र है उन वेद शास्त्रों में कवियों के शुद्ध हृदय ने जो कुछ भी लिख करके रखा है, उन कवियों की भाषा को ज्ञान सूर्य रवि जब इस सृष्टि पर उतरता है कलियुग के अंत में, वही आकर सच्ची कहानी। वही आकर के शास्त्रों का सार समझा रहे और उन शास्त्रों का सार अभी समझा रहे जो बुद्धि का उपयोग करेंगे, जो भगवान की सबसे बड़ी दात है जन्म से, वो उस बात को समझ जाएंगे। बाकी परंपरा से चले हुए जो शास्त्र है उन शास्त्रों के आधार पर श्रद्धा पूर्वक जो चलते रहेंगे तो उनको कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। शास्त्र झूठे नहीं है, कवियों के सच्चे हृदय ने लिखे हैं, लेकिन उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया है। वो सही रत्न भगवान आकर इसलिए वेद शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका सार भगवान को बताना पड़ता है। जब तक वो खुद आकर के न बताए तब तक कोई समझ नहीं सकता, और समझे तो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझ में नहीं आएगी। अभी भगवान खुद आकर के बता रहा है कि मैं तो निराकार हूँ, भूत प्रेत भी नहीं दिखाई पड़ते हैं जिनको सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनको तो कम से कम आकारी शरीर तो होता है, दिव्य प्रकाश कर मेरे को तो कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर की तो बात छोड़ो, मैं निराकार निरंजन जो कहा जाता हूँ वो तो जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार है वैसे मैं भी निराकार हूँ। सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा या हाथी की तरह मोटा ताजा होगा?
सांप
जैसा लंबा होगा। कीड़े मकोड़े का बाप कीड़े मकोड़े जैसा होगा या कोई दूसरे आप आकार प्रकार का होगा? कीड़े मकोड़े जैसा होगा। तो ऐसे ही हम आत्माओं का जो बाप है, हम जो आत्मा है जिसके बारे में शास्त्रों में भी कहा है आत्मा अणु रूप है, वो विभूति के मध्य में रहती है, ब्रह्म मध्य प्राण आवेश सभ्य। जब आदमी शरीर छोड़े तो विभूति के बीच में प्राण रूप आत्मा का ध्यान करे, इतनी बात तो शास्त्रों में भी है ना कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है, आत्मा विभूति के मस्तक विभूति के मध्य में रहती है, नाक के ऊपर रहती है नहीं, ये प्रकृति और ये स्थान इसका जो डायरेक्शन है जहाँ पर आत्मा निवास करती है उस स्थान को कहते हैं उत्तम अंग। कैसा अंग? उत्तम अंग। राजा जहाँ बैठेगा वो तो उत्तम कुर्सी ही कही जाएगी ना, जो सारे शरीर की इंद्रियों को शरीर को कंट्रोल करने वाला जो राजा है वो आत्मा, वो आत्मा जहाँ बैठती है वो उत्तम अंग कहा जाता है, वहां बैठ करके सारे शरीर को कंट्रोल करती है। कोई कहे कि अगर सारे शरीर को आत्मा कंट्रोल करती है एक जगह बैठ के तो उंगली को जब काट दिया जाता है तो फड़कती क्यों है? वो ऐसे ही फड़कती है जैसे हम पत्थर को हाथ से फेंकते हैं तो जब तक उसमें हाथ से फेंके हुए का वेग रहेगा तब तक पत्थर आगे जाएगा ऊपर जाएगा, जब वो वेग खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा की जो शक्ति सारे शरीर में खून के द्वारा दौड़ रही है वो खून का आवेग जब तक उसमें है कणकण में तब तक वो उछल रही है, और जैसे ही वो आवेग खत्म होगा उसका उछलना बंद हो जाएगा। तो ये नहीं कि आत्मा सारे शरीर में व्यापक, आत्मा तो अपने केंद्र बिंदु पर रहती है। इंदिरा गांधी को गोली चलाने वाले को अगर ये पता होता कि आत्मा यहाँ रहती है तो एक ही गोली डाल देता, उसका निशाना बहुत अच्छा रहता, एक गोली में ही काम तमाम हो जाता, लेकिन उसे बेचारे को पता ही नहीं था, उसने 28 गोलियां सीने में डाल दी और फिर भी उनके जिंदा होने की आशा बची रही। एक हॉस्पिटल से दूसरे दूसरे से तीसरे में ले जाते रहे, कहने का मतलब ये है कि भक्ति में अगर गोली मारी जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको जिंदा कर सकती। शरीर के दूसरे अंग में अगर गोली दागी जाए और हॉस्पिटल तैयार हो, डॉक्टर तैयार हो, तो उसके जिंदा रहने की आशा है। तो भक्ति के मध्य में जो आत्मा विराजमान है उसकी रोशनी आंखों से निकलती है, निकल रही है ना। जब वो आत्मा निकल जाती है, स्टार वो निकल जाता है, तो आत्मा के निकल जाने से आंखें बटन हो जाती, रोशनी निकल। आत्मा इस तरीके से इस तरह का
गाड़ी में
बैटरी होती है छोटी सी सेल, ऐसे एक तरह की बैटरी है। ये बैटरी आत्मा एक दूसरे के संग के रंग में आकर के डिस्चार्ज होती है। क्या ये आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा दूसरों का संग करती है ना, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। और ये जन्म जन्मांतर से यही क्रम चलता चला आ रहा है। चार युगों का चक्कर है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और चारों युगों में 84 का चक्कर लगाती है आत्मा। संसर्ग संपर्क में संघर्ष के रंग में आती रहती है, तो आत्मा की ताकत तो कम होती जाएगी ना। तो जो आत्मा की ताकत कम होती जाती है वो बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाती है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है आखिरी 84वें जन्म में, उसको चार्ज करने के लिए वो बैटरी को चार्ज करने वाला पावर हाउस सुप्रीम सोल वो आता है। वो सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदु। उस बिंदु रूप बाप के आने से आत्मा का संग उस बाप के साथ लगने से उन आत्माओं को जो राहत मिलती है वो और किसी मनुष्य गुरु से नहीं, और दूसरे दूसरे मनुष्य गुरु अल्पकालिक प्राप्ति कराएंगे। लेकिन आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दे ये किसी के बस की बात नहीं। मुक्ति कैसे? दुख दर्दों से मुक्ति। जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे और जीवन के रहने के बावजूद भी आत्मा दुख न भोगे सुख भोगे, दुख से मुक्ति बनी रहे और सुख भोगता रहे। ऐसी जीवन मुक्ति और ऐसी मुक्ति का वर्षा वो परमात्मा बाप आकर के देता है। कोई दुनिया का धर्म गुरु, धर्म नेता या धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध कैस्ट नहीं दे सकते। उन्हें इब्राहिम बुद्ध कैस्ट की आत्मा को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा उसी से मिलता है। वो निराकार बाप आकर के देता है। अब क्योंकि वो निराकार है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे बिनु जाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्तावर जोगी, कहते हैं ना इसे। तो जब उसको हाथ पाओ ना काम काम मुंह है ही नहीं, तो ये सारे कार्य कैसे करता है? इन बुद्धवानों से गुरुओं से पूछा जाता है, अरे वो तो भगवान है, तो कुछ भी कर सकता है। भगवान आके बाजीगरी करेगा क्या, जादूगरी करेगा क्या? ये बाजीगरी करना जादूगरी करना ये छोटों का काम, उथलों का काम। भगवान उथला नहीं है, वो प्रकृति के कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। भगवान ही आकर के अगर प्रकृति के नियम को तोड़ने लगेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? भगवान तो आकर के सीधी सीधी बात बताता है। जैसे मनुष्य आत्मा अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा किसी न किसी में प्रवेश करती है। क्या प्रवेश कर सकती है ना? ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है और इसका प्रूफ उस संस्कृति गीता में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ प्रवेश तुम क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, बंधन में नहीं आता। आत्मा गर्भ में क्यों आती है, बंधन में क्यों आती है? क्यों? उसने पाप पुण्य किए होते। भगवान तो सारे ज्ञान का जानकार है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानने वाला है, तो गर्भ में क्यों आकर के बंधेगा? वो बुद्धि में प्रवेश करता है और बुद्धि में प्रवेश करता है तो आया गया न दुख है सब में प्रवेश कर जाएगा क्या? उसके लिए मनुष्य गुरु होने के लिए सर्वव्यापी, सर्वव्यापी माने कीड़े मकोड़े में भी भगवान है, मनुष्यों में भी भगवान है, धर्म पिताओं में भी भगवान था, शंकराचार्य में भी भगवान था, व्यास में भी भगवान था, सारे ही भगवान 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 हो। अरे जो ऊंचा होगा वो ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा या किसी में भी प्रवेश करेगा? वो भूत प्रेत होते हैं उनका भी कोई मुकरर रथ होता है उसी में प्रवेश करते हैं या किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं? वो भूत प्रेत भी उनका भी मुकरर रथ होता है। ऐसे ही भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है इस दुनिया के सब धर्म पिताओं से ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है, वो भी शक्ति रूपी रंगमंच के जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है हीरो हीरोइन उनमें प्रवेश करके पाठ। कौन है हीरो हीरोइन? राम और कृष्ण की आत्मा। उन राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा वो शक्ति रूपी रंगमंच पर प्रवेश करके पहले माता पिता का पाठ करते हैं। क्या बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है, माता या पिता या गुरु या टीचर? माता प्रत्यक्ष होती। तो ऐसे ही जब कलयुग का अंत होता है तो भगवान शिव परम धाम से आकर के इस सृष्टि रूपी रघुवंच की वह आत्मा जो पहले कभी 16 कला संपूर्ण कृष्ण थी, जिसके लिए गायन भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उस 16 कला संपूर्ण वाली आत्मा जो सत्य के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के मुख में थी, वही जरामण के चक्र में आते आते मनुष्यों के संग के रंग में आते आते कलयुग के अंत में आकर के हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य बन जाते हैं। वो साधारण मनुष्य में ब्राह्मण में बूढ़े ब्राह्मण में वो परमात्मा से प्रवेश करते, प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देते। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ माने सृष्टि की ऐसे बड़ी की बड़ी माँ जिससे ज्यादा बड़ा माँ का पाठ और कोई नियम कोई बजाय नहीं। कैसे कैसे? ऐसे कि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा वंशों को जन्म मिला मुखवंशावली करके, उन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से जो ये कहे कि बाबा ने हमको दुख दिया। दृष्टि मात्र से भी कभी दुख नहीं दिया, वाइब्रेशन मात्र से भी कभी किसी ने दुख नहीं समझा, दुख अनुभव नहीं किया, और कर्मेंद्रियों से दुख अनुभव होने की तो बात ही नहीं। ऐसा पाप जघन्य का करने का जो अनुभव है या कराने का अनुभव जो है वो ब्रह्मा के द्वारा किसी ब्रह्मा वंश को नहीं सहन सहन किया। जैसे माँ बच्चे के लिए इतना सहन करती है कि दुनिया में और कोई संबंधी ऐसा नहीं है जो उतना सहन कर सके, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सहन करके सौहार्द पूर्वक स्नेह पूर्वक उन बच्चों की पालन। आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम सैकड़ों की तादाद में हजारों की तादाद में खुले हुए, कोई भी पुराना से पुराना ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको दुख दिया, बाबा ने हर बच्चे को दुख दिया। तो माँ के रूप में वो कृष्ण के आखिरी टोले में जिसका नाम दादा लेखराज था उसका नाम ब्रह्मा पड़ा, उसको ब्रह्मा के द्वारा ये ब्रह्मावत संवेदना होता क्या है कि ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा भुवन शवनी कहे जाते हैं उनमें दो तरह के बच्चे पैदा हुए, एक मुखवंशावली एक मुखवंशावली। मुखवंशावली उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई शिव की वाणी को जीवन में धारण करते और दूसरों को उस ज्ञान वाणी को धारण कराते, वो है मुखवंशावली ब्राह्मण जो देवता बनने वाले, और एक वो है जो मुख की वाणी को ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो तो ब्रह्मा के चोले को ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज जिनका नाम था सिंध हैदराबाद के जो ब्राह्मण थे उनका चेहरा बड़ा गोरा चिट्ठा शरीर लंबा चौड़ा बहुत अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व था। तो जिन आत्माओं ने ज्ञान की बातों पर तो ध्यान नहीं दिया लेकिन उनके बोले जितने जो दैहिक रूप था उसकी तरफ बुद्धि ज्यादा चले, तो ऐसी आत्माएं जो है वो उनकी गोद से प्यार करने लगी। जिन्होंने गोद का सुख लिया और उस सुप्रीम सोल परमात्मा की वाणी को नहीं पहचाना तो फिर वो देह का बच्चा हुआ या रूहानी बच्चा रूह का हुआ, देह का बच्चा हुआ। तो जो देह के बच्चे बनते हैं भय तो ब्रह्मा की औलाद लेकिन देह भान से पैदा हुए वो असुर बन जाते हैं, और उसी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की जो औलाद बनते हैं वो देवता बनते हैं। देवता माना जिन्हें देना ही देना है किसी से लेने की इच्छा नहीं करती, और जो दैत्य होते हैं राक्षस होते हैं वो बाहुबली होते हैं, बाहुबल का प्रयोग करने वाले होते हैं, रूहानियत उनमें नहीं होती। तो दो तरह के ब्राह्मण ब्रह्मा से पैदा होते हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण वो भी ब्रह्मा की संतान और एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे उंगलियों में गिने जाने योग्य श्रेष्ठ स्वार्थी को पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा हुए वो पुरुषार्थी ब्राह्मण संख्या में बहुत थोड़े हुए, यही बात यहाँ देखी जा रही। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा जो पैदाइश हुई वो दो तरह के ब्राह्मण स्पष्ट देखने में आ रहे, जो मुख से निकली हुई बातों को ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए मुरली में बोला कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। तो अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखा जाए कि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने जो वाणी सुनाई उसकी कैसे कहां गायब हो गई और क्यों गायब हो गई, वो कैसे क्यों नहीं मिल रही है। जितने भी गुरु लोग होते हैं उनकी कैसे तैयार की जा रही है आज की दुनिया में, उनको लोग सुरक्षित करके रखते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए उन्होंने ब्रह्मा की जो वाणी है उसको सुरक्षित करके क्यों नहीं रखा, उसे क्यों नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने वाणी पर ध्यान नहीं दिया, बोली से उनका प्यार नहीं था, उनका प्यार था उस देहधारी व्यक्ति से। जबकि उसी मुरली ने ये भी बोल दिया इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, इसका फोटो भी नहीं रखना, अगर इसका फोटो भी रखेंगे तो पतित बन जाएगा। लेकिन बाबा की वाणी पर तो उनका ध्यान ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए। अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय है उनमें सबसे ज्यादा फोटो की खिंचावनी ब्रह्म बुआई आश्रम। बाबा कहते समझाने के लिए त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा का फोटो दिया ही हुआ है, अलग से रखने की क्या दर्द है। अगर दूसरों की सेवा करनी है वो लक्ष्य अलग है, लेकिन सिंगल फोटो रखने की दरकार नहीं। क्यों नहीं रखना? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है लेकिन देवता धर्म की स्थापना उस शरीर के द्वारा नहीं हो पाती। तो दादा लेखराज के नाम से बिक जाते, इसलिए दुनिया में ब्रह्मा के मूर्तियां नहीं बनती, मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते और विष्णु और शंकर के मंदिर बनते। क्योंकि दुनिया उस स्वरूप को पूजती है जिसने सिद्धि पाई, जिसके द्वारा कार्य आरंभ तो किया गया लेकिन कार्य का अंत नहीं हुआ, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, उसको दुनिया नहीं मानती। विष्णु की रूप मूर्ति है, वो शंकर की मूर्ति है जो दुनिया में आज पाई जाती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती है, क्योंकि सिद्धि को प्राप्त की। ब्रह्मा ने तो आसक्त से भी छोड़ दिए, तो वो कृष्ण की आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में चला। अभी तो वो आत्मा क्योंकि अकाली मौत से भी छोड़ा था, जब तक डॉक्टर आया तब तक उन्होंने प्राण पखेड़ उड़ाए दिए, तो वो तो सूक्ष्म शरीर उनको दान करना था। अभी भी सूक्ष्म शरीर दान करके गुजार दादी नाम की एक ब्रह्मा कुमारी है उनमें प्रवेश कर, और प्रवेश करके वो अपना कुछ भी उनको सुनाना होता है वो सुनाते हैं। क्या सुनाएगी? ज्ञान की बात सुनाएंगे या धारणा की बातें सुनाएंगे? धारणा की बातें क्यों सुनाते हैं? ज्ञान की बातें उतनी क्यों नहीं सुनाते जो परमात्मा शिव उनके तन से आकर के सुनाती है? कारण क्या? कारण ये कि वो जन्म जन्मांतर की देवात्मा है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देवता के रूप में पहले पहले जन्म लेने वाली आत्मा है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है देवात्मा की। तो जो देवात्मा होगी वो तो दिव्य वाणी ही सुनाएगी ना, दिव्यता ग्रहण करने वाली वाणी सुनाएगी ना, ज्ञान की वाणी कैसे सुनाएगी? तो परमात्मा शिव की जो वाणी है जिसे मुरली कहा जाता है उसके लिए गायन है शास्त्रों में, मुरली तेरी पे जादू। अब क्योंकि वो वाणी कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा सुनाई गई थी, इसलिए शास्त्रों में ये लिख दिया है कि कृष्ण का रथ था। क्या रथ? माना शरीर। शास्त्रों में लिखा भी है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को क्या समझ? रथ समझ। इंद्रियों को क्या समझ? घोड़ा समझ। तो इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए वो कृष्ण के आखिरी चोले रूपी रथ में परमात्मा शिव ने निराकार ने प्रवेश करके वाणी चलाई। वाणी कहो ज्ञान के बाण कहो, उन ज्ञान के बाणों से उन्होंने वो सारा कार्य किया जो नई सृष्टि की स्थापना का कार्य जरूरी, वो था ब्राह्मण धर्म की स्थापना। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई लेकिन देवता हुई, ब्राह्मण भी दो तरह के हो गए, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत थोड़ी हुई और बाकी सब निष्कर्ष ब्राह्मण नीची कोटि के ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कितनी कुरिया मानी जाती है? नौ कुरिया मानी गई, लौकुरिया क्यों मानेंगे? हाँ, क्योंकि दुनिया में आज नौ धर्म मुख्य है, दसवां धर्म भी है रूस का नास्तिक धर्म, लेकिन वो ना आत्मा को मानता है, ना परमात्मा को मानता है, ना स्वर्ग को मानता है, ना नरक को मानता है। जब कुछ मानता ही नहीं, आत्मा परमात्मा बाप को ही नहीं मानता, तो फिर उसको वर्षा कैसे मिले? तो पुनः नास्तिकों में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा पापी है भगवान बाप। दुनिया में डॉक्टरों के कॉलेज हैं, वकीलों के कॉलेज हैं, इंजीनियर्स के कॉलेज हैं, उन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ पढ़ करके वकील डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कम सिखाया और कैसे सिखाया? क्या अपने आप सीख गए? जब डॉक्टरी को अपने आप नहीं सीखता है, उसके लिए भी कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं, तो ये राजाई के भी कॉलेज हुए होंगे। वो सदगुरु भगवान है जो आकर के राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई देता है। ये जन्म जन्मांतर की राजाई कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकता, वो भगवान बाप ही आकर के कलयुग के अंत में अभी सिखाएगा और हर कल्प कल्प सिखाता है। अब तो भगवान आया हुआ है, वो राजयोग सिखा रहा है। लोगों ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण राजयोग नहीं सिखाता है। श्री कृष्ण तो षष्ठ रूपी रघुवंश का पहला पत्ता है, पहला बच्चा है। वो हम मनुष्य आत्माओं में पहली पहली आत्मा है, लेकिन उस षष्ठरूपी रंगमंच पर पहली आत्मा को जन्म देने वाला कोई बाप भी तो होगा। वो बाप कौन? वो बाप है राम बाप, राम वाली सोल। वो जन्म जन्मांतर जन्मण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से संसार में विख्यात होते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, औरो एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत के पावे मोर। मान शंकर की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान को कोई पाए नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो निराकार निरंजन शंकर में प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष हो गया। वो बड़े देवता देवता कहा गया, कृष्ण को बड़ा देवता नहीं कहा गया, शंकर को बड़ा देवता कहा जाता है, विष्णु को बड़ा देवता नहीं कहा जाता, शंकर को कहा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता बहुत बड़े माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और देवदेव महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि वो ऐसा कार्य करके जाता है जो कार्य दूसरे देवताओं के द्वारा परमात्मा नहीं करता। कौन सा कार्य? दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपनी धर्म की स्थापना करते, एक नया धर्म चालू कर देते, नया धर्म खंड स्थापन हो जाता है, लेकिन पुराने पन का विनाश कोई नहीं करता। सब डरते हैं पुराने मुल्ला मौलवी पंडित इनसे टक्कर कौन ले। एक भगवान शिव ही एक शक्ति पर आकर के शंकर के स्वरूप को चुनता है, जिसमें प्रवेश करके वो शिव शंकर एक कहा जाता है, नहीं तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संगारकारी। कहां दुनिया का संगार करने वाला और कहां दुनिया का कल्याण करने वाला, ये दो नाम मिला करके एक क्यों कर दिए? क्योंकि एक ही शरीर में दोनों आत्मा प्रवेश करते हैं। एक शरीरधारी का नाम पड़ता है शंकर, और उसमें जो तीसरे नेत्र के रूप में जो आत्मा दिखाई जाती है उसका नाम है शिव नेत्र। शिव भगवान प्रवेश करता है, शिव भगवान भी प्रवेश करता है, और फिर मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। वो चंद्रमा किसकी यादगार है? वो कृष्ण चंद्र वाली आत्मा की यादगार है, जो चंद्र 16 कला संपूर्ण भी कभी बनता है। सत्युग के आद में वो चंद्र 16 कला संपूर्ण था, कलयुग के अंत में आकर के वो दूध का चांद जाकर के बचता है, अधूरा चंद्र। कोई दादा लेखराज किशोर जो शरीर छोड़ करके फिर शंकर में प्रवेश हो, तो एक चोले में तीन आत्माएं काम करती है। एक चोलाधारी की आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, शंकर कहो, शंकर माने मिक्स कहते ना, शंकर मक्का, शंकर कपास, वर्ण शंकर क्या तुलसीदास जी ने लिखा था, हे वर्ण शंकर समय, हमारे इस दुनिया में सब वर्ण शंकर हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं है पक्का, इतना बेविचार फैल गया है। माना एक ही शरीर में तीन प्रकार की आत्माएं कार्य करती है मिक्स होकर के, उसको कहा जाता है शंकर। वास्तव में है वो राम का ही, तो सृष्टि के आदि में राम था, कोई कलयुग के अंत में आकर के शंकर के नाम से पहचान। ब्रह्म कुमारियों के बीच में से कोई ब्राह्मण बच्चा निकलता है, ब्राह्मण को जनेऊ दिखाया जाता है ना, तो शंकर भी उनको भी जनेऊ दिखाते हैं क्या? ये तो कभी दिखाते हैं ना, तो जरूर ब्राह्मण ही होगा ना, कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो भी ब्रह्मा का बच्चा था, लेकिन उन ब्रह्मा के बच्चों में से जो बड़ा ज्ञानी बच्चा बनता है उसका नाम शंकर है। ब्रह्मा की सबसे बड़ी औलाद भी है, उसका नाम शास्त्र में क्या बताया गया? सनत कुमार, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी थे सनत कुमार, ज्ञान के हिसाब से जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है वही बड़ा माना जाता है। तो वो सनत कुमार जो ब्राह्मण बच्चा हुआ वही अपनी 5-7 वर्ष की अवस्था में शंकर के नाम से संसार में योगीश्वर के रूप में प्रकट होता है। योगीश्वर, योगीश्वर माने योगियों का ईश्वर, तो वो योगियों का ईश्वर परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करके वो राजयोग ऐसा सीखता है और सिखाता का सिखाने का निमित्त बनता है कि वो शंकर के नाम रूपधारी व्यक्तित्व जो है वो संसार में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए उन सब का खंडन कर दे। धर्म संस्थापनाता है विनाशाय च दुष्कृतम्। जितने अधर्म फैले हुए हैं उनका नाश करता है और सुंदर कार्य करने वालों का इस दुनिया में स्थापन करता है। ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना और ज्ञान लेना, इसके अलावा अगर ब्राह्मण कोई दूसरा काम करता है तो ब्राह्मण नहीं माना जाता, कर्म से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वही जिसका कर्म हो ज्ञान लेना और ज्ञान देना, माने ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा का जीवन में आचरण रहा वही ब्राह्मण का आचरण। परमात्मा शिव के ऐसे बच्चे जो है जो दुनिया की धंधा धोली से बहुत दूर होते, उनको अपने पेट की चिंता नहीं होती, जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई उनका नाम पड़ गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैसे विशेष इंद्रियां कहां पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर में। वो द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में दो दो बातें शुरू होती, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाते। इब्राहिम बुद्ध कहते गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाए दिए जाते। जो सनातन धर्म भारतवर्ष में फैला हुआ था वो सनातन धर्म में अलग अलग छेड़े हो जाते। हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाती है और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसका कारण क्या है? जब सबसे पुराना दुनिया का धर्म हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म छीन क्यों हो गया? सनातन धर्म में अर्थात हिंदू धर्म वालों की जनसंख्या दुनिया में इतनी कम क्यों हो गई? क्योंकि ये द्वैतवादी जो धर्म आए, मानवीय धर्म जो आए, उन्होंने आकर के अपना प्रभाव जमा दिया और विकारी वृत्तियां फैला दी। जो देवताएं अब विचारी थे उनको विचारी बनाया शक्ति और वो दूसरे दूसरे धर्मों में हिंदू कन्वर्ट होते रहे। इब्राहिम आए तो इस्लाम में धर्म में कन्वर्ट हो गए, महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, मोहम्मद आए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, शंकराचार्य आए संन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए, गुरु नानक आए सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं कोई भी हिंदू नहीं बनी? ये तो अंत में अभी 100-150 साल के अंदर आर्य समाज धर्म एक ऐसा आया है जिसने दुनिया के सब धर्म वालों को आह्वान कर दिया इंडिया में। तो कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन जाए, क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों आह्वान किया? उन्होंने आह्वान इसलिए किया कि ये वो आत्माएं हैं जो हर धर्म में टाइम टू टाइम चेंज होती रही, कन्वर्ट होती रही और किसी धर्म में उनको सुख नहीं मिला। जैसे गीता में कहा है स्वधर्म में धर्म से पर धर्म हो भया, अपने धर्म में मर जाओ सो अच्छा और दूसरे धर्म में दास दासी बनकर के रहो वो अच्छा नहीं। तो ये वो आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की हिंदू धर्म की, जो द्वापर से इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। वहां इनको तो मिला, फिर महात्मा बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई, मोहम्मद आए तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गई। अरे जहां जहां देखी तबाह वाला, जहां जहां नया पद देखा वहां वहां कन्वर्ट होते रहे सुखी खोज, और सुख की जगह इनको क्या मिला? दुखी दुख। तो हर धर्म में जिनको दुख मिलता रहा उनकी हर धर्म से श्रद्धा उखड़ जाती, वो किसी धर्म विशेष को महत्व देने वाली आत्माएं नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि आर्य समाज की जो है वो देवताओं को नहीं मानते, किसी धर्म विशेष को नहीं मानते। उनके द्वारा जो राज्य स्थापन हुआ है आज वो कौरव गवर्नमेंट का राज्य स्थापन हुआ है। क्या कौरव जो है वो कौरव कौओं की तरह रवा रवा शोरगुल करने वाले, और शोरगुल करने वाली आत्माएं राज्य नहीं चला सकती क्योंकि उनमें राज्य चलाने की ताकत नहीं है, उनको सिर्फ प्रजा परस्ती चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको वोट चाहिए, श्रेष्ठ आत्माएं नहीं चाहिए। आज की सत्ता में जो श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं वो नहीं है, गुंडा प्रकृति की आत्माएं घुसी पड़ी, ऐसी आत्माओं के द्वारा राज्य नहीं चल सकता। इसलिए बाबा ने बोला प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, कायदे कराते भगवान आकर के स्थापन करते हैं। राजयोग के द्वारा जन्म जन्मांतर का राजा बना कर किया जाता है। अभी आज भी ऐसे ऐसे देश हैं दो दो एक ही जहां राजा ही चल रही है। नेपाल में आज भी राजा का नाम निशान तो है कम से कम, और दूसरे दूसरे धर्मों में तो दूसरे दूसरे देशों में तो राजा ही बिल्कुल खत्म कर दी। प्रजा के ऊपर प्रजा कर रहे तो वो प्रजा आपके ऊपर प्रजा कर रहा है जी, अब खलास होने वाला। क्या भगवान आया हुआ है? भगवान जो आया हुआ है वो आने के साथ साथ दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार कर रहा है। क्या है विनाश की सामग्री? एटम बम, जिसका इंचार्ज बनाता है शंकर जी। इसलिए शंकर जी के नाम के साथ साथ क्या आता है? हर हर बम बम। आज से 68 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। क्या मनुष्य की बुद्धि पे नाम निशान नहीं था? और जब से भगवान आया ब्रह्मा चिंतन में उसी समय से एटम बम भी बनना शुरू हो गया। लेकिन वो एटम बम कार्य व्यवहार में तब तक नहीं आ सकते जब तक उनका मुखिया शंकर संसार में पूरा प्रत्यक्ष न हो जाए। उनका निर्माण करने वाला, उनका विस्फोट कराने वाला, उन्हें एटमिक एनर्जी को निर्माण करने वाले मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बनाई हुई इतनी घातक रचना को नष्ट कर सके। नष्ट भी नहीं कर सकते और विस्फोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुद भी डरते हैं अगर इनको विस्फोट शुरू किया तो हम भी इसी दुनिया में ठीक हो, हम भी मर जाते। लेकिन उनका जो प्रवर्तक है इसके नाम के पीछे लगाया जाता है हर हर बम बम, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। वो बमों का विस्फोट करने वाला तब बमों का विस्फोट करवाएगा जब ज्ञान के बमों का पूरा विस्फोट हो जाए। ये ज्ञान के बम अभी तैयार हो गए। क्या ज्ञान के बम तैयार हो गए हैं? क्या बम? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्यापक नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है? एक व्यापी जहां है वो आकर के यहां समझो, बुद्धि से समझो। बुद्धि सबसे बड़ी दात है जन्म से मनुष्य को मिली हुई, तो बुद्धि से फैसला करो। इस 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में वो भगवान का रूप कौन सा है, कहां कार्य कर रहा है, वो आकर के ज्ञान की दृष्टि से समझो। भगवान तो निराकार है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। हम अपनी आत्मा को ही इन आंखों से नहीं देख पाते तो आत्माओं के बाद परमात्मा को कैसे देखें? जो चीज आंखों से देखने का विषय नहीं है उनको इन आंखों की बजाय तीसरे नेत्र से जाना चाहिए। तो वो तीसरे नेत्र को हमें खुला रखने के लिए ये जरूरी है कि एक बार हमको जो ईश्वरीय ज्ञान मिल जाए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, हम उसकी प्रैक्टिस नित्य प्रति करें। अगर नित्य प्रति प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो हम कच्चे स्टूडेंट रह जाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी होता है विद्यालय में जाके रोज अध्ययन न करे तो बीच की पढ़ाई उसकी कट हो जाएगी, आगे का पाठ उसको समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वर सारे जगत का गुरु कहा जाता है, जगत गुरु। आज के सन्यासियों ने तो झूठे नाम रखाए रही है जगत गुरु। क्या सारा जगत उनको गुरु मानता है? नहीं मानता है। और जगत का गुरु तो परमात्मा ही हो सकता है। जो सृष्टि पर जब आता है तो सारी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ता है। सारी दुनिया जब उसके सामने झुके तब वो कहा जाता है जगत। श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1008 जगत गुरु जी महाराज, ये टाइटल जो है, ये मालाओं के टाइटल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जो माला रूपी संगठन तैयार करता है उसको परमात्मा का टाइटल। दुनिया के हर धर्म में माला घुमाई जाती है। कोई ऐसा धर्म बताओ नास्तिक धर्म को छोड़ के जो माला को स्मरण न करता हो, माला के मणकों को न मानता हो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सन्यासी हो, हर धर्म के लोग माला को स्मरण करते हैं, स्वीकरण करते हैं। क्या कारण है? ये माला रूपी संगठन भगवान ने आकर के बनाया। सृष्टि की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है, जिस संगठन को परमात्मा प्यार से, परमात्मा प्यार के धागे से बांधा गया, परमात्मा के सुनाए हुए ज्ञान के धागे से बांधा गया। वो माला और माला के चैतन्य मण के दुनिया के हर धर्म में फूल गया। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो माला के महत्व न देता हो। अभी वो माला तैयार हो रही, क्या वो संगठन तैयार हो रहा है। उन माला रूपी संगठनों में जो सबसे श्रेष्ठ संगठन है वो है 8 का संगठन। उसको हमारी भारतीय परंपरा में कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो वो 8 और 9 आत्माएं जो है उस अनुष्ठान में पूरी जरूर जाएगी। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या? नवग्रह पूजन। लोग समझते हैं वो ग्रह कोई आसमान के जड़ सितारे, शुक्र सितारा है, गुरु सितारा है, सूर्य है, चंद्र है, बुध है, उनको समझ लेते हैं। लेकिन पूजा जड़ की नहीं होती, पूजा चैतन्य आत्माएं जो श्रेष्ठ कर्म करती हैं उनके सद्गुणों की, सत्कर्मों की पूजा। तो नवग्रह जो पूजन है वो इस बात की यादगार है कि भगवान ने सृष्टि पर आकर के हमको पूजनीय बनाया। और पूजनीय आत्माओं में जो सबसे ज्यादा पूज्य बनी वो 8 और 9 आत्माएं बनी। अष्टदेव के रूप में उनकी आज की पूजा होती। दक्षिण भारत में अष्टदेवों की सबसे ज्यादा पूजा होती। उत्तर भारत में इतने मंदिर नहीं बने हुए अष्टदेव होंगे और दक्षिण भारत में बने हुए। कारण क्या है? कोई तो कारण रहा होगा। उसका कारण ये है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, बाकी भाषा दूसरी है, वहां के रीति रस्म चलन रिवाज आदि सब दूसरे दूसरे। उत्तर भारत वालों के दूसरे रिवाज, उनके दूसरे रिवाज। वो बुद्धिवादी जाता है दक्षिण भारत में, जितने भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है वो दक्षिण भारत से निकल रहे हैं। उत्तर भारत में इतने अच्छे वैज्ञानिक नहीं निकल रहे। कारण क्या है? कि वो बुद्धिवादी। जैसे विदेशी लोग बुद्धिवादी होते हैं वैसे दक्षिण भारत के लोग बुद्धिवादी। तो भारत के हिसाब से दक्षिण के ज्यादा बुद्धिवादी होने के कारण इस ईश्वरीय ज्ञान को ज्यादा पकड़ रहे हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान फल फूल रहा है, फल फलना फूलना चाहिए उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत से भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है शास्त्रों। कौन से भगवान? चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, कहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं? उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म उत्तर भारत से होता है, लेकिन प्रत्यक्ष पहले करने के निमित्त बनते हैं दक्षिण भारत वाले। और दक्षिण भारत की रात में ट्रेन की ट्रेन, डब्बे के डब्बे भरे हुए चले आ रहे हैं, वो प्रत्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर भारत के कुंभकर्ण आराम से नींद, ज्ञान की नींद सो रहे। अगर सही बात उनको सुनाओ भी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अरे ज्ञान की बात तो मैं लड़ाई किस बात की? अच्छा लगता है तो मानिए, नहीं अच्छा लगता है तो दुनिया में इतने धर्म चल रहे हैं, जिसको जिस रास्ते पर चलना हो चल, सच्चाई होगी तो उसकी विजय होगी, अगर झूठा होगा तो अपने आप उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं यार। तो ये दक्षिण भारत के लोग जो है वो इतने फर्फाबाद में कंपिल में आकर के इतनी शिक्षा लेने के लिए क्यों इतना दबाव दे रहे हैं, जबकि वो बेचारे भाषा भी नहीं जानते। क्या भाषा नहीं जानते हैं? भाषा न जानने के बावजूद बिकड़ 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 अपनी भाषा में बोलते हैं, पूरी ज्ञान की गहराई को समझ भी नहीं सकते, तो भी वो चल रहे हैं और उठा रहे हैं ज्ञान। और उत्तर भारत के लोग भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, जिस हिंदी भाषा में भगवान आकर के बोलता है वो हिंदी भाषा को वो लोग बेचारे जानते नहीं, और जो लोग हिंदी भाषा को जानते हैं वो उसका उसका ध्यान ही नहीं देते। हिसाब क्या हिसाब है? जिनको भाषा नहीं आती उनको पहले ज्ञान दिया जाता है। कन्याएं माता है भोले प्रकृति की होती है, उनके ऊपर ज्यादा दबाव दिया जाता है, तो पुरुष प्रकृति का कलयुग के अंत में तो भगवान आकर के कन्या और माताओं को पहले उठाता है। इस ज्ञान की भी एक विशेषता है, दक्षिण भारत के लोग ज्ञान को ज्यादा उठा रहे हैं और कन्या माता ज्यादा उठा रही। क्यों? क्योंकि भगवान गरीब निवास गया। आज भारत की बैंकों को देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा जमा पैसा जमा होगा या भाइयों के नाम पैसा ज्यादा जमा होगा? बोलो भाई, आज भारत की बैंकों का हिसाब देखा जाए तो कन्या माताओं के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा बैंकों में या भाइयों के नाम ज्यादा पैसा जमा होगा? भाइयों के नाम ज्यादा जमा। क्यों भाई? एक ही भगवान के दोनों बच्चे हैं, स्त्री चोला और पुरुष चोला। एक जन्म में स्त्री चोला मिलता है आत्मा को, एक जन्म में पुरुष चोला मिलता है। अंत मध्य सुगत्य होती है, पुरुष में और स्त्री में दोनों में काम विकार प्रधान है। काम क्रोध लोक मोह अहंकार, काम विकार की प्रधानता होने के कारण जीवन भर पुरुष चोला जो है वो स्त्री चोलों को याद करता है। तो अंत मध्य क्या याद आएगा? स्त्री चोला याद आएगा, तो स्त्री जन्म मिल जाते। स्त्री सारा जीवन जो है काम विकार की प्रधानता होने के कारण सारा जीवन पुरुष चोले को याद करती है, तो अंतिम समय क्या याद आएगा? पुरुष चोला याद आएगा, वो क्या करती है? पुरुष बन जाती है। अंत मत सो गति तो होती है। तो जब दोनों ही समान है इतना अंतर क्यों? सतु में लक्ष्मी नारायण दोनों गद्दी पर बैठते थे, लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में हो गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है उनका मान सम्मान होता है, वहां देवताएं रमण करती है, देवताएं निवास करती है। और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, तिरस्कार होता है, वहां राक्षस निवास करते हैं। तो आज की दुनिया किसकी है? देवताओं की दुनिया कहे या राक्षसों की दुनिया कहे? राक्षसी प्रकृति की। अभी इस दुनिया को परखने के लिए परमात्मा बाप फिर से आया, वो आया हुआ है तो जरूर गरीब निवास बन गया था। जो गरीब है उसको पोषण देगा। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो गरीब है और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो टाटा बिरला रईस है वो और ज्यादा रईस होते जा रहे हैं। तो दुनिया गड्ढे में जाएगी या ऊपर उठेगी?
गड्ढे
में जा रही। आज का किसान जो है वो सरसब्ज क्यों नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में, क्या कारण है? क्योंकि पसीने की कमाई खाता है। पसीने की कमाई खाने वाला आज की दुनिया में करोड़पति नहीं बन सकता। जो भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाले वही करोड़पति अरबपति बन गए। तो भगवान को गरीब निवास बन गया। वो ईश्वरीय गवर्नमेंट जो तैयार हो रही है वो आज की माला अभी तैयार होने वाली है, थोड़ी समय के अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगी, उसके बाद 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। विजय माला जो हम घुमाते हैं मंदिरों में, घुमाते रहे मस्जिदों में, मुसलमान लोग उस माला को घुमाते हैं, क्रिश्चियन लोग उस माला को घुमाते हैं, वो 8 और 108 विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली आज में अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाली। फिर भगवान की 1000 सहयोगी भुजाएं जो ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाओं के रूप में गाई जाती है, सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र विष्णु नाम जो गाए जाते हैं, विष्णु के सहस्त्र नाम, वो आत्मा भी प्रत्यक्ष हो गया। 1000 आत्माएं भगवान की सहयोगी बनती है भुजाओं के रूप में, कहते हैं ना हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया हमारी दाहिनी भुजा कट गई, तो कोई भुजा कट गई क्या? नहीं, सहयोगी ने शरीर छोड़ दिया, विशेष जो सहयोगी था वो चला गया। तो ऐसे ही भगवान के कार्य में 1000 आत्माएं ऐसी संसार में प्रत्यक्ष होंगी जो तन से मन से धन से पूरा सहयोग करेगी, लेकिन पवित्रता का सहयोग नहीं दे पाएगी। क्या? प्योरिटी, वो सहयोग नहीं दे पाएगी। इसलिए वो शास्त्र भुजाओं के रूप में गाई
जाती है,
वो शास्त्र भुजी ब्रह्मा अभी पार्ट बजाएगा। ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक उधा हुआ है, और ब्रह्मा कोई एक नहीं होता है, ब्रह्मा को 4 मुख दिखाई जाते हैं। क्या? 4 मुख, 5 मुख भी दिखाए जाते हैं। चतुरानन कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है, जरूर इतने मुख वाले कोई व्यक्ति नहीं होते। नंबर वार पार्ट बजाने वाली आत्माओं के नाम है, ये प्रायोरिटी दी जाती है। पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा ब्रह्मा, चौथा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के रूप में ये कार्य चलता रहेगा। जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा शक्ति अब बन रही है। पहले ब्राह्मणों की शक्ति बनती है, फिर देवताओं की शक्ति बनती है, फिर क्षत्रियों की शक्ति बनती है, फिर वैश्यों की शक्ति बनती है, फिर शूद्रों की शक्ति बनती है। शूद्रों में और देवताओं में फर्क तो जरूर होगा। देवताएं निर्विकारी गाए जाते हैं और शूद्र विकारी गाए जाते हैं। है बंगी है, मतलब कोई कर्म ऐसे है जिसके आधार पर उसको बंगी कहा जाता है। शूद्र, शूद्र को नीची दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं नीची दृष्टि से? क्योंकि विकारी, निर्विकारी ब्राह्मण बोलते हैं, तो उन ब्राह्मणों को राजा लोग जो है अपना मंत्री बना करके रखते थे कि हमारे तो इतनी अकल नहीं है, हम तो विकारी राजा हैं, इन ब्राह्मणों से हम राय लेकर के अपना कार्य करते रहेंगे, राजा ही चलाते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध है, ये हमको शुद्ध मंत्र ना देंगे। निर्विकारी पनेगा स्त्री पुरुष विवाहित पुरुष विवाहित स्त्री कन्या कुमार इनमें सबसे जास्ती पवित्र कौन होता है? कन्या सबसे जास्ती पवित्र होती है। क्यों? आज के सन्यासी पवित्र नहीं होते। क्यों? अब कोई सन्यासी गांव में होगा उनको बुला के लाओ, हम अभी कहते हैं कोई सन्यासी पवित्र नहीं है क्या?
क्योंकि वो बाहर रहते हैं लेकिन उनका मन बुद्धि अंदर रहता है।
सन्यासी भी जब नौ दुर्गा पूजन होता है ना तो कन्याओं की पूजा करते हैं, उनके पांव पूजते हैं, इससे क्या साबित हुआ कि कन्या के मुकाबले बहुत ज्यादा पवित्र, इसलिए उनकी पूजा करते हैं कन्याओं। और वो ही कन्या जब शादी हो जाती है तो सन्यासी को पांव छूती, क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? एक दिन में भिखारी बन गई, शक्ति छीण होने लगी। शक्ति है ना, स्त्री की शक्ति हो और चाहे पुरुष की शक्ति हो, जिस शक्ति के मेल से बच्चा पैदा होता है वो शक्ति अगर छीण हो जाए पतित हो जाए तो उसको पतित कहा जाता है। और वो शक्ति जिसकी छीण ना हो उसको अपनी भारतीय परंपरा में अमोघ वीर्य शंकर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोघ वीर्य शंकर जी, माने उनका वीर्य कभी नीचे नहीं के सकता था, इसलिए वो दुनिया के पूज्य बन गए। इसलिए पवित्रता का बहुत मान, जो नई शक्ति तैयार होती है उसमें सब आत्माएं पवित्र होती है मनुष्य, इसलिए प्रकृति सारा कार्य संपन्न करती है। पेड़ ऐसे ऐसे पैदा होंगे जिनमें से कपड़ा अपने आप निकलेगा, भोज पत्र निकलेगा, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा निकलेगा, पक्षी ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैदा होंगे जो पुष्पक विमान का काम करेंगे, उनको थोड़ा सा इशारा दो तो इधर घूमेंगे, इधर इशारा दो तो इधर घूमेंगे, ऊपर कहो तो ऊपर उड़ेंगे, नीचे कहो तो नीचे आ जाएंगे। ये प्राकृतिक सौंदर्य होगा, मनुष्य को कोई कारखाना आरखाना चलाने की दरकार नहीं रही, होगा सब कुछ, सुख शांति पूरी होगी, अशांति की कोई बात नहीं, थकान की कोई बात नहीं, थकान का नाम निशान नहीं। आज वैसे भी मनुष्य काम नहीं करना चाहता है, चाहे ऑफिसरों को देख लो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसों में जाके देख लो, सारे ही मस्ती मारना चाहते, स्कूलों में जाके देख लो, इंजीनियरों को जाके देख लो, सारे भ्रष्टाचारी बने पड़े, पैसा लाओ और सड़क पास कर देंगे। ऐसा क्यों होता जा रहा है? आराम कोशिश नहीं क्यों होती जा रही है? इसलिए होती जा रही है कि अब मनुष्य जो है थक चुका है, देह का भान इतना बढ़ चुका है कि आज आदमी से काम नहीं हो रहा है, वो हराम की कमाई खाना चाहता है। अब भगवान आकर के सृष्टि को बदल रहा है, वो भी बता रहा है बच्चे मैंने तो इसकी सृष्टि स्थापन की थी जहां तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता था। आज से 100-200 साल पहले घर के सब सदस्य काम नहीं करते थे, घर का एक मुखिया होता था, कमाई करता था और पूरा परिवार खाता था। और आज परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं और फिर भी पेट पूर्ति नहीं हो पा रही, दुखी और परेशान हो रहे, क्या कारण हुआ, क्या अंतर पड़ गया, देह बांध का अंतर। आज जो आत्मा है वो इस देह के संबंध में 84 जन्मों में आते आते अपने को देह समझ बैठे, हम आत्मा नहीं है, हम देह है। आज से 2500 साल पहले महर्षियों ने ऋषियों ने जो शास्त्र बनाए थे उनमें ये परंपरा चालू की थी कि टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, ताकि एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखने की प्रैक्टिस बनी रहे। आज वो बिंदी लगाना सिर्फ माताओं के अंदर रह गया। अच्छी बात, माताओं ने अभी तक भी धारण की हुई है, पुरुषों ने वो भी छोड़ दिया। अगर लगाते भी हैं तो सन्यासी लोग त्रिकुंड लगा लेते। हमें एक आत्मा नहीं है, हम तीन आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हमारे अंदर मौजूद है, हम त्रिमूर्ति शिव है। उल्टा ज्ञान उठाई है। अगर यही बात है ये बुद्धि में रही होती कि उन ऋषियों महर्षियों ने आत्म की स्मृति के लिए ये टीका की निशानी लगाई थी कि हमको तुमको याद रहे कि हम आत्म की स्मृति में टिकने वाली आत्मा, टीका लगाने की बात नहीं है, तो नजारा ही दूसरा हो जाए। अभी भगवान बाप आके कहते हैं बच्चे कोई भी दिखावा करने की दरकार नहीं, बिंदी लगाने की दरकार नहीं, टीका लगाने की दरकार नहीं, त्रिकोण लगाने की दरकार नहीं, अपने को समझो कि हम स्टार आत्मा है, देह समझना भूल जाओ, अपने को भी देह मत समझो आत्मा समझो और दूसरे को भी देह मत समझो आत्मा समझो। अगर ये प्रैक्टिस पक्की करेंगे तो 5 विकार अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि देह समझने से 5 विकारों की पैदाइश होती है। देह समझा मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है तो भान आ गया, स्त्री पुरुष का भान आया और एक दूसरे में आकर्षण शुरू हो जाता है। तो जितनी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम आत्मा है, उतना उतना ये काम विकार भागता जाए। क्रोध कब आता है, मैं पहलवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, एक चिट्ठी है क्या पहलवान है, ये हमारे सामने क्या बोलता है, मारूंगा जाकर। तो अहंकार आया, क्रोध आया, क्यों आया क्रोध, क्योंकि देह के रूप में देखा, क्रोध भी देह के आधार पर आता है। लोभ क्यों आया, लोभ, मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं, ये क्या है, कर्क का विपमंगल, ये मेरा मुकाबला कैसे करे। ये लोभ की वृत्ति जो है वो भी अहंकार लाती। मुसलमानों ने क्या किया, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों किया, उन्होंने लोभ की वृत्ति से प्रभावित होकर के हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया और आक्रामक बन गए, जो नहीं करना था वो ही किया। चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, मेरा बच्चा। माँ के पेट से पैदा हुआ तो उसको उसके साथ मुंह लग गया। संगा संजायते कामा कामा क्रोध हो अभी जायते, ऐसी ऐसी बात है। मोह जो पैदा होता है वो भी देह अभिमान के कारण। मेरा बच्चा मेरे शरीर से पैदा हुआ, बाप को भी मोह आता है उस बच्चे को, माँ को भी मोह आता है। अरे दुनिया में इतने ढेर सारे बच्चे हैं, इतने दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी तरफ बुद्धि क्यों नहीं जाती? अपने बच्चे की तरफ बुद्धि क्यों जा रही है इतनी? क्योंकि मेरा पत्थर है, मेरी देह से पैदा हुआ। तो मोह की पैदाइश भी देह के कारण होती है। अहंकार, मैं इस शरीर से राजा हूं, ये रंगत। तो ये देह का अहंकार जो है वो पांचों विकारों को पैदा करता है। ये पांच विकारों का शमन करने के लिए भगवान आकर के पहली बात, पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चे तुम अपने को जो आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो ये पांच विकार अपने आप भागे। देवताओं की आत्म की स्मृति होती, देवताओं को देह की स्मृति नहीं होती। आत्म की स्मृति होने से आत्मा की तरफ बुद्धि का रुझान जाता है, और देह की स्मृति होने से देह की जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी तरफ बुद्धि का रुझान जाता है। उनमें भी भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा खींचती है, भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि का रुझान जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। श्रेष्ठ इंद्रियों की तरफ बुद्धि का रुझान जाएगा जहां आत्मा निवास करती है, तो श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से संतान पैदा होने लगी। देवताओं की सृष्टि भ्रष्टाचारी इंद्रियों से पैदा नहीं होती, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से उनकी पैदाइश होती है। इसके लिए मिसाल भी है हमारे भारतवर्ष में। कौन सा पक्षी है
मोर,
जो राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है?
मोर।
मोर क्यों? मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों मानते हैं? क्यों उसके मोर का पंख जो है भगवान कृष्ण के माथे पर लगाया जाता है? क्योंकि मोर विकारी इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। आज भी एक ऐसा मिसाल है मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है और उसी से गर्भ रह जाते हैं। तो जब मोर मोरनी का मिसाल ये बात बता रहा है तो क्या ऐसी शक्ति नहीं होगी जहां श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदा हो? भ्रष्ट इंद्रियों गुमूत वाली इंद्रियों में अगर बुद्धि रमण करेगी तो बुद्धि भ्रष्ट बनेगी या श्रेष्ठ बनेगी? भ्रष्ट बनेगी। अभी बाप भगवान आया हुआ है कि बच्चे तुम तो देवता थे, अभी तुम असुर बन गए। तुम जब देवता थे तो तुम सुखदायी सुख भोगते, ऐसा सुख नहीं भोगते थे जिसके आदि में भी दुख हो, मध्य में भी दुख हो और अंत में भी दुखदायी बन जाए। बच्चे की जब पैदाइश होती है तो स्त्री को भी दुख होता है। जो कन्या आकर के माँ बनती है उसको माँ के बनने की पैदाइश की आदि में कितना दुख अनुभव होता है, और पुरुष की भी निस्तेज हो जाता है, वो भी शक्ति क्षीण हो जाता है। लंबे समय का जीवन है ब्रह्मचर्य जीवन, उसका नष्ट हो जाता है। तो जिसके आज में भी दुख है उसकी जब पैदाइश होगी बच्चे की तो वो सुखदायी बच्चा पैदा होगा या दुखदायी होगा? दुखदायी होगा। आज जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं भिक्षु चिन्ह पैदा हो रहे हैं, कोई भी माँ बाप को मान्यता नहीं देते, अपने रचयिता को ही मान्यता नहीं देते, तो दुनिया को क्या सुख देंगे? अब ये शक्ति नष्ट होने वाली, एटम बम बन चुके, आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था एटम बम क्या चीज होती, अभी भगवान आया हुआ है तो एटम की एनर्जी की तैयार हुई पड़ेगी, लेकिन भगवान का स्थापना का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, माला रूपी संगठन जब तक तैयार नहीं होंगे, जो सारी शक्ति को कंट्रोल करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा जब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं होती है, वो 9 लाख की बड़ी से बड़ी माला, 9 लाख सितारे, आसमान के सितारे माने ऊंची स्टेज वाले सितारे, चैतन्य सितारे, जब तक संसार में ज्ञान की रोशनी नहीं फेंकने वाले तैयार होते हैं, तब तक एटम बमों का विस्फोट पुरजोश से नहीं होगा। जब वो 9 लाख सितारे तैयार हो जाएंगे तो संसार में 5-7 रोज के अंदर एटमिक विस्फोट इतनी जोर से होंगे कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी का नियंत्रण डोल जाएगा, भूकंप आएंगे बड़े बड़े, और बड़े बड़े भूकंपों में जो आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं 100 मार की, सब धराशायी हो जाए, ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप। एटम बमों के फटने से उतना विनाश नहीं होगा, भूकंप से बड़ा विनाश। एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो मीलों ऊंचे पहाड़ है बर्फ के, वो पिघल करके समुद्र में आ जाएंगे। समुद्र का स्तर सैकड़ों मीटर ऊपर उठ जाएगा, बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे जो शहर है वो सब डूब जाएंगे, वो ही नहीं डूब जाएंगे, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, जो 500-700 वर्ष पहले जिनका नाम निशान मनुष्य के पर मस्तिष्क पटल पर नहीं था, वो भी समुद्र के दर अंतराल में समा जाए। ये दूसरे दूसरे धर्मों के धर्मखंड हैं, ये धर्मखंड हजारों साल पहले न थे न अब रहने वाले, एक ही धर्मखंड बचेगा, भारत खंड। उस भारत खंड में देवताओं का राज्य होगा, असुरों का राज्य खलास होने वाला। आज भारतीय जनमानस के ऊपर विदेशी संस्कृति हावी हो चुकी है, विदेशी शासन तंत्र हावी हो चुका है, स्वदेशी शासन तंत्र था राजाओं का राज्य, जो राजाओं की राजाई भगवान ने आकर के स्थापन की, विदेशियों ने आकर उसको प्रजातंत्र बना दिया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, अब ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य खलास होने वाला, सफल नहीं हो सकता। लोग समझते भी जा रहे हैं इस बात, ये भी जान रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसी हस्तियां इस संसार में जेल हो चुकी, अब लोगों को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा या अंधेरा नजर आ रहा है। अब थोड़े समय के अंदर सबकी आंख खुले, थोड़ा सा विनाश का नगाड़ा बजने दो, लोग एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। ओम शांति।